तू तो अगलो कार्यक्रम चालू करो। जैन धर्म की तीर्थंकर परंपरा को नमन, तेरा पंथ की आचार्य परंपरा को नमन, महामनस्वी महायशस्वी महातेजस्वी महाओजस्वी हृदय सम्राट आचार्य श्री महासमन जी के चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन, मातृ हृदया साधु प्रमुखा जी के चरण कमलों में वंदन, कानपुर की धर्मनगरी के धर्मानुरागी भाई और बहनों मातृशक्ति को नमन, मेरे अनुज उपासक बंधु कांतिलाल जी कावड़िया। आज पर्युषण का हमारा तीसरा दिन, हम स्नेह संवत्सरी की ओर अग्रसर कर रहे हैं और पर्युषण एक ऐसा महापर्व है जो कि हमारे भीतर जो गांठें पड़ी हुई है, क्रोध मान माया लोभ ईर्ष्या घृणा, उन गांठों को पर्युषण ढीला करता है और संवत्सरी के दिन वो गांठें बिल्कुल ढीली हो जाती है। तो संवत्सरी का जो हम प्रतिक्रमण करते हैं उसके अंदर उन सब ढील पड़ी हुई गांठों का हम निस्तारण करते हैं। बंधुओं, इसलिए कहा जाता है कि अगर शुद्ध होना है तो प्रतिदिन प्रतिक्रमण करके शुद्ध हो जाओ। शुद्धता कब आती है कि हमने किसी को कष्ट दे करके मन से वचन से काया से करने से करवाने से अनुमोदने से 84 लाख जीवा योनि के किसी भी प्राणी को हम कष्ट देते हैं, वही कर्म बंधन का कारण है। और हम रोज का रोज प्रतिक्रमण करते हैं और शुद्ध हो जाते हैं तो हमारा वो दोष कल हो जाता है, दोष का शुद्धिकरण होता है। इसीलिए साधु संत दिन में 2 बार प्रतिक्रमण करते हैं कि दिन भर की उनके द्वारा हुई गलतियां, उनके द्वारा हुए दोष सेवन का शुद्धिकरण हो जाए। बंधुओं, अगर हमको मोक्ष जाना है तो एक बहुत बड़ा अनुभव गम्य मैं सूत्र आपको बताना चाहता हूं कि 84 लाख जीवा योनि में हम कई समय से भटकते आ रहे हैं, कईयों से हमने रिश्ता जोड़ा है, कईयों से हमने रिश्ता तोड़ा है, कईयों से हम मिले हैं, कईयों से बिछड़े हैं, तो उनसे हमने कोई न कोई दोष सेवन किया, उनको कभी न कभी कष्ट दिया, नहीं हमारा हिसाब बाकी है। हमारी वणिक भाषा में बात करूं तो हमारा हिसाब बाकी है। तो जब हम प्रतिक्रमण करके प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी जीवों से क्षमा याचना करते रहते हैं, प्रतिक्रमण के माध्यम से, भाव के माध्यम से, मन के माध्यम से, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से होता है, तो हमारा शुद्धिकरण जब होता है और किसी भी प्राणी से कोई हिसाब किताब बाकी ना रहता है तो हम शुद्ध होकर के और हम मोक्षगामी बन जाते हैं। तो प्रश्न ये है कि ये जो है शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया है, अब ये है कि हिंसा और अहिंसा, पाप और पुण्य की बात आती है तो ये किसके किसके साथ हिंसा होती है। हिंसा और अहिंसा को समझने के लिए हमें षट जीव निकाय को समझना होता है। हमारी जैन धर्म की विशेष थ्योरी षट जीव निकाय, ये जैन धर्म की अपनी अलग से थ्योरी है जो शायद किसी भी धर्म में नहीं मिलती है। अहिंसा की जितनी सूक्ष्म व्याख्या जैन धर्म में की गई है उतनी व्याख्या शायद किसी दूसरे धर्म में नहीं की गई है, क्योंकि हमने अहिंसा की सूक्ष्मता को पकड़ा है, पहचाना है और प्रतिपादित किया है। हमारी अहिंसा क्या है कि हिंसा करनी नहीं, करवानी नहीं, अनुमोदनी नहीं, मन से नहीं, वचन से नहीं, काया से नहीं, इन तीन को 3 से गुणा करते हैं तो हमारा जो महाव्रति होते हैं वो 9 कोटि त्यागी होते हैं और वो पूर्ण अहिंसक गिने जाते हैं। इसलिए हमारी अहिंसा बहुत उच्चतम अवस्था है। पर प्रश्न ये है कि हिंसा और अहिंसा हम कैसे किसके साथ करें, हिंसा कैसे होती है प्रश्न ये, तो हमें जीव और अजीव को समझना होता है। जीव मतलब जिसमें चेतना होती है, और अजीव जिसके अंदर चेतना नहीं होती है, जड़ पदार्थ को हम अजीव कहते हैं। तो षट जीव निकाय है वो जीवों के भेद है, 84 लाख जीवों के भेद षट जीव निकाय के अंदर आए हुए हैं। तो वो षट का मतलब 6, जीव मतलब आत्मा, और निकाय माने समूह, 6 जीवों के समूह को षट जीव निकाय कहते हैं। हम एक एक समूह को, हमारे पास समय है तो बहुत अच्छी तरह से हम समझेंगे। पहला षट जीव निकाय का समूह है पृथ्वी काय। अब इसके अंदर 2 शब्द है, पृथ्वी काय, इसके अंदर 2 बातें आती है, एक तो पृथ्वी और एक काय। काय का मतलब पृथ्वी के अंदर रहने वाला जितना सबका जीव समूह है वह पृथ्वी काय कहलाता है। मतलब पृथ्वी स्वयं पृथ्वी में रहने वाले जीव जंतु हो सकते हैं, कोई बिल बना के रहता है, कोई कैसे भी रह सकता है, वो जीव नहीं, पृथ्वी स्वयं कई जीवों का समूह है, उनको हम पृथ्वी काय कहते हैं। कि पृथ्वी की पूरी खुद की एक काया है और वो स्वयं असंख्य जीव है, उसको पृथ्वी काय कहा जाता है। अब पृथ्वी काय के अंदर चूना, माटी, खरड़, गेरू, पत्थर, ये खाने, ये जितनी भी है ना, ये सारी जो है वो हमारी पृथ्वी काय के अंदर आती है। अब ये जीवों का समूह है, मतलब कष्ट जीव को होता है, कष्ट चेतना जीव में होती है, दुख दर्द जीव अनुभव करता है, जो ये अजीव होता है उसको कोई दुख दर्द नहीं होता है, क्योंकि उसके अंदर जान नहीं है, उसमें आत्मा नहीं है। दुख दर्द किसको होगा, जिसके अंदर आत्मा होगी उसको दुख दर्द होता है, वो संवेदन करता है, सोचता है, विचारता है और प्रजनन करता है, उसकी वो बढ़ोतरी होती, ग्रोथ होती है। ये सारे 9 जो है उसके लक्षण जो है चेतना के हमारे आत्मा के अंदर बताए गए हैं। तो अब ये पृथ्वी काय, इस पृथ्वी काय को आज हमारे आत्मा में भगवान ने 2500 साल पहले बताया था, अब वो विज्ञान भी उसको मानने लगा है। अब धीरे धीरे विज्ञान की इतनी तरक्की हुई, इतने परीक्षण हुए हैं, तो उन परीक्षणों के माध्यम से विज्ञान भी मानने लगा है कि पृथ्वी काय के अंदर जान होती है। तो उन्होंने इसके कई परीक्षण किए, उन्होंने क्या किया, जो सॉफ्ट मिट्टी है उस मिट्टी के जगह जगह पर छोटे छोटे खड्डे किए, और उन खड्डों के अंदर कुछ जो है मीटर लगा दिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट लगा दिए, और उस खड्डों के अंदर इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से ये परीक्षण किया कि कुछ समय के बाद में वो खड्डे जो किए हुए थे वो लेवल हो गए, समतल हो गए। ऐसा क्यों होता है कि हमारे शरीर के अंदर कोई घाव हो जाता है तो थोड़े समय के बाद में उस घाव के ऊपर चमड़ी आ जाती है, क्योंकि वो चेतना होती है उसी में घाव भरता है, और जो जड़ पदार्थ होता है उसके अंदर घाव का कोई प्रश्न ही नहीं है। तो इस बात को लेकर के ऐसे बहुत से प्रयोग विज्ञान ने किए हैं, और विज्ञान ये कहता है, उन्होंने नापा है कि जो हिमालय पर्वत है वो प्रतिवर्ष जो है 10 सेंटीमीटर जो है वो बढ़ता है, ग्रोथ होती है। तो इसलिए पूरा हिमालय पर्वत एक चट्टान रूप में एक पृथ्वी काय है। इसीलिए हमारे जैन साधु जो महाव्रती होते हैं, और जो हम अनुव्रती होते हैं जिनकी हमारी सीमा होती है, तो हमको हम सीमाकरण करते हैं कि पृथ्वी को हम कितना फोड़ें, क्योंकि गृहस्थी होता है उसको अपना घर बनाने के लिए, अपना कारोबार करने के लिए कुछ छूट होती है, उसकी सीमा होती है। इसीलिए हम कितना जो है उस पृथ्वी
का जो है हम कितना काट छांट करें, पृथ्वी के अंदर कितना हम छेद करें, पृथ्वी को कितना करें, तो ये विवेक होना चाहिए। क्योंकि हम बिना उपयोगिता के, बिना आवश्यकता के, बिना जानकारी के, सबसे बड़ी बात है हमको ये पता ही नहीं है कि पृथ्वी काय में जीव होते हैं तो उसकी हम रक्षा कैसे करेंगे। किसी जीव की जानकारी पहले करने के बाद ही उसकी रक्षा करते हैं कि ये जीव है और अजीव है। इसीलिए ये षट जीव निकाय को बहुत गहराई से समझना अति आवश्यक है। तो इसीलिए हम पृथ्वी काय के जीवों की हिंसा, हम गृहस्थी लोग जितनी हमको आवश्यकता हो, हमारे तो दोस्त लगते ही हैं, उतनी हम हिंसा करें, और साधु तो करते ही नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि भाई अधिक फोड़ करके जो हमारे 15 तरह के कर्मादान जो बताए गए उसके अंदर पृथ्वी को फोड़ने का निषेध किया गया है। जो हमारा जो धर्म यह कहता है कि माइंस का काम करना, ये जो पृथ्वी काम क्या है, पृथ्वी काय में आता है, मार्बल की माइंस हो, चूने की माइंस हो, या कोई भी मेटल की माइंस हो, वो खोद करके वो सारा हम क्या करते हैं, पृथ्वी काय को फोड़ते हैं। जब पृथ्वी काय को फोड़ा जाता है तो फोड़ने पर वो असंख्य तरह के अनंत जीव जो होते हैं, जो कि एक ही साथ जन्म लेते हैं, और फोड़ते फोड़ने पर वे सभी मर जाते हैं। जैसे एक आलू है, आलू के अंदर असंख्य निगोद के जीव होते हैं, इसलिए जमीकंद है, ठीक है ना। ये जब विषय अलग आएगा तो हम अलग बात करेंगे, अभी हम पृथ्वी काय की बात कर रहे हैं कि ये भी आलू की तरह जो है असंख्य जीवों का पिंड है, इसलिए पृथ्वी काय जो है कहा जाता है। बंधुओं, ये थ्योरी जो है पृथ्वी काय की किसी भी धर्म के अंदर इतनी गहराई से नहीं बताई गई है जितनी हमारी जैन धर्म में है। इसीलिए जैन धर्म उच्च धर्म कहा गया है कि वो कितना ध्यान करते हैं, कितना ध्यान रखते हैं कि छोटे छोटे जीवों के प्रति भी उनके मन में कितनी करुणा है, कितनी दया है। भगवान ने कहा चाहे छोटा जीव हो चाहे बड़ा जीव हो, और हमारे भिक्षु स्वामी ने तो ये कहा है कि एक इंद्रिय की हिंसा करना और छोटे से छोटे निगोद के जीवों की भी हिंसा करना यह पाप है, ये हिंसा गिनी जाती है। हमने तो उसको सबको एक ही हिंसा के अंदर माना है। बंधुओं, तो कितना करुणाशील जो है हमारा धर्म है। तो भाइयों और बहनों, षट जीव निकाय के माध्यम से हम ज्ञानी होने के कारण, हम भगवान महावीर के अन्यायी होने के कारण जो हमको ज्ञान मिला है कि पृथ्वी काय के जीवों की जो हम हिंसा न करें, तो गृहस्थी होने के नाते उतना ही हम संकल्प करें कि एक मकान बनाएंगे, दो मकान बनाएंगे, और फला फला जो है माइंस का हम व्यवसाय नहीं करेंगे। क्योंकि हम कितने भारी कर्मों का बंधन जो है उन माइंस को फोड़ करके हम करते हैं, तो ये हमें नहीं फेंकी जानी चाहिए। अब मैं दूसरा जो टॉपिक है अप काय पे आता हूँ। अप का मतलब पानी, पानी में रहने वाले जीव नहीं, मछली मगरमच्छ वगैरह बहुत से जीव रहते ही हैं, लेकिन पानी स्वयं वो जो है काय है, वो एक शरीर है, और ये असंख्य जीवों का पानी खुद जो है वो शरीर है। और आज विज्ञान ने भी सिद्ध किया है कि अपकाय मतलब पानी की एक बूंद में 34,000 जो है जीव यानी आत्माएं रहती है। तो बंधुओं, एक बूंद में 34,000 निगोद टाइप के जीव होते हैं। तो हम पानी, कच्चे पानी का जो है उपयोग करते हैं और नल को खुला छोड़ देते हैं, स्नान के लिए हम बाल्टियों खर्च करते हैं, और कितना पानी गार्डन के अंदर बहा देते हैं। बंधुओं, तो हम जैनी होने के कारण हमें समझना चाहिए कि हमारे कितनी हिंसा लग रही है और हम क्यों करें। जैसे कि मेरा कई वर्षों से नियम है कि स्नान के लिए 5 लीटर पानी से अधिक उपयोग नहीं करना, स्नान का साबुन नहीं लगाना। तो ये संयम है, संयम के लिए कहा गया। हिंसा किसको कहा जाता है? सर्वभूतेषु संयम अहिंसा, जितने भी जीव हैं उनके प्रति करुणा के भाव रखना, उनकी हिंसा नहीं करना, हिंसा का भाव नहीं रखना, यह संयम है। संयम का मतलब किसी प्राणी को कष्ट न हो ऐसा हम कार्य करें, वो संयम होता है हमारा, हमारी वजह से किसी प्राणी को कष्ट ना हो, ये बहुत बड़ा विवेक है, ये बहुत बड़ा समझ है और ये बहुत बड़ा धर्म है। और इस धर्म को हमने नहीं, इस दुनिया में जितने भी धर्म हैं मोटे मोटे रूप ने, सभी धर्मों ने माना है कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। यानी हम जैसा बीज बोएंगे वैसा हमको फल मिलेगा। अगर हम हिंसा के बीज बोते हैं तो हमें पाप लगेगा, और हम अहिंसा करते हैं तो ये प्राणियों की रक्षा होती है और अहिंसा से हमारी निर्जरा होती है। अहिंसा और धर्म एक ही चीज है, एक सिक्के के दो पहलू है। अहिंसा का पालन करने वाला व्यक्ति धार्मिक होगा, क्योंकि अहिंसा ऐसी जननी, ऐसी माँ है जिसकी कोख से सारे धर्म जन्मे हैं। सभी धर्म अहिंसा की कोख से जन्मे हैं, क्योंकि अहिंसा परमो धर्म। सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? वो अहिंसा का धर्म है कि किसी भी प्राणी को, अब अहिंसा ये है कि किसी भी प्राणी को कष्ट, में तो कष्ट बारे में सोचना ही नहीं है, और स्वयं को भी कष्ट न हो, ये भी अहिंसा है। जैसे कि मन में नकारात्मक भाव लाए कि मैं आज मेरे कष्ट आ गया, आज मेरे कर्जा चढ़ गया, आज मेरे किसी से झगड़ा हो गया, आज ऐसा हो गया तो मैं सुसाइड कर लूं, क्यों न मर जाऊं, ऐसे जीवन में क्या रखा है। तो ऐसा नकारात्मक भाव लाना वह भी हिंसा है। उसकी जगह आप ये भाव लाइए कि भाई ये किसने बोया। भाइयों और बहनों, आप ये स्पष्ट मान के चलिए, हमारे आत्मा में उदाहरण आता है कि हजार गायें खड़ी है और एक दूध पीने वाला बछड़ा है, वो बछड़ा दूर खड़ा है, उस बछड़े को छोड़ दो तो वो बछड़ा हजार गायों में से अपनी माँ का थन जो है चूएगा और दूध अपनी माँ के थन का दूध पिएगा। बंधुओं, ये क्या कहता है? मेरे कर्म है आपके पीछे नहीं आएंगे, आपके कर्म आपकी पत्नी के पीछे नहीं जाएंगे, आपके बेटे के पीछे नहीं आएंगे, वो कर्म अपनी अपनी आत्मा के पीछे लगे रहते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि एक अंधेरा है, रात्रि में हम किसी भी ऐसे सामूहिक भवन में 50 लोग बैठे हैं, अब सर्प आ गया, अब सर्प का जिससे हिसाब आती है वो सर्प उसी को डसेगा, 49 को नहीं डसेगा, 50 जिसका हिसाब बाकी है, जिससे लेन देन है। आज हमने क्या देखा कि प्रभु परमात्मा जो पार्श्वनाथ भगवान के न वो कमट का जीव 10 भवों तक बराबर करता रहा, तो उसने बदला पार्श्व के जीव से क्यों लिया, दूसरे के जीव से क्यों नहीं लिया, क्योंकि उनका आपसी हिसाब किताब था। तो बंधुओं, हम ये नकारात्मक भाव लावे, उल्टा भाव लावे, पाप बंधन का भाव लावे, बीमारी आ गई और निराश हो गए, तो भाई ये बीमारी लाया कौन है, इसका जिम्मेवार कौन है? इसका जिम्मेवार मैं स्वयं हूं। हमको हर क्षण प्रतिक्षण ये चिंतन करना चाहिए कि जो मेरे साथ में अच्छा होता है, बुरा होता है, मन के अनुकूल होता है, मन के प्रतिकूल होता है, सब मेरा किया हुआ है। इसके लिए दूसरा कोई दोषी नहीं है। आप जितना जितना इस दुनिया को निर्दोष समझोगे, समझना ही नहीं, उसको निर्दोष साबित करना कि सुराणा जी बिल्कुल निर्दोष है, सुराणा जी ने मेरे को गाली दी, मेरा अपमान किया या मेरे साथ कुछ भी बुरा किया, कोर्ट केस किया, तो सुराणा जी मेरे उपकारी हैं, मेरा इनसे हिसाब है, मैं उसको संभाव पूर्वक सहन करूं, क्योंकि हिसाब है जब किया है। क्या आप सोचते हो कि आपके घर में कोई भी पैसा मांगने वाला ही आता है और बिना मांगने वाला क्या आपकी पेड़ी चढ़ सकता है? आप क्या कहोगे, भाई क्यों आए, किस लिए आए, क्या हिसाब है? हिसाब है तो आपको आओ बैठो, अपना हिसाब ले जाओ, चौपड़ी निकालो। तो दुनिया सारी इसी जो हम व्यवहार में करते हैं, व्यवहार में देखते हैं, तो हमारा जो भीतर का जगत है वह भी जो निश्चय जगत है वह भी इसी रीति नीति से चलता है। कानून कायदे दोनों तरफ से एक है, लेकिन उनका उनके नियम अलग अलग हैं, लेकिन सिस्टम दोनों एक से ही बने हुए हैं। तो इसीलिए हम अपकाय की बात कर रहे थे कि हम अननेसेसरी, वो अभयदान कहलाता है कि भाई मुझे 5 लीटर पानी चाहिए क्यों, मेरा शरीर है इससे मिट्टी है, अशुद्धि है, इससे आलस आ जाएगा, या इसको स्वच्छ रखना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि इसी से धर्म ध्यान करना है। बंधुओं एक चीज ध्यान रखो कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, आप हर वक्त चिंतन करो मैं शरीर को भोजन क्यों दे रहा हूं, इस शरीर को स्वच्छ क्यों रख रहा हूं, ये भगवान का मंदिर है, इसके भीतर विराजमान प्रभु विराजमान है, तीर्थंकर प्रभु, केवली प्रभु, मोक्ष जाने वाले प्रभु इसके भीतर विराजमान है। क्या कोई मंदिर में अशुद्धि करता है, कोई अशुद्धि करता है, कोई नहीं करता। अब मैं पागल आदमी की बात नहीं करता हूं, समझदार आदमी मंदिर में कोई भी अशुद्धि नहीं करता है, क्योंकि वो भगवान का मंदिर है, वो पूजनीय है, वो हमारे देवता है, वो वंदनीय है, और हम वहां क्यों जाते हैं, उनसे कृपा मांगते हैं कि आप जिस रास्ते से गए हो हमारा भी कल्याण करो, हमको भी वो रास्ता बताओ, हमारे पे कृपा बरसाओ। हम गुरुदेव से क्यों जाते हैं, गुरुदेव से कृपा मांगने के लिए जाते हैं कि गुरुदेव मैं भी कृपा कराओ, मुझ अबोध को, मुझ अज्ञानी को आपकी कृपा दृष्टि से ज्ञान दो, मुझे सम्यक दर्शनी बनाओ, कुछ ऐसे शब्द बोलो, ऐसे सूत्र दो, मेरे हृदय का परिवर्तन करो, ताकि मैं भी धर्म के मार्ग से आऊं। हम धन दौलत मांगने नहीं जाते हैं प्रभु के पास में, प्रभु के पास में सम्यक दर्शन मांगने जाते हैं, और वो सम्यक दर्शन कृपा से मिलता है। देखिए बंधुओं, हमारा जो धर्म है वो कृपा पर आधारित है। हमारी तीर्थंकरों की आप किसी भी धर्म को उठा करके देख लिए, किसी भी आचार्य को उठा करके देख लिए, अगर सुपात्र है। अब एक आचार्य इतने हजार साधुओं में से एक का सिलेक्शन करता है युवाचारी के लिए, उस पर कृपा बरसाता है, क्यों, कि वो सुपात्र होता है। कृपा प्राप्त करने के लिए सुपात्र बनना पड़ता है। एक माँ बाप के 5 बेटे हैं तो माता पिता तो पक्षपात नहीं करते हैं, लेकिन उनका दिल, उनका भीतर किस पर होता है, कौन सी बीमणी पे होता है, कौन से बेटे पे होता है, जो आज्ञाकारी वो सहज है, वो ये किसी को आपस के अंदर घृणा की दृष्टि से 5 लड़कों या बहुओं को नहीं कहते हैं कि तू खराब है, लेकिन वो मन है अपने आप उसकी तरफ दौड़ जाता है। बहू आज्ञाकारी है, बेटा आज्ञाकारी है, माँ बाप को साता देता है, माँ बाप को धर्म कराता है, माँ का बाप का मुंह से शब्द नहीं निकले उसके पहले वो भांप लेता है कि इनको इस चीज की आवश्यकता है, इनको ये तकलीफ है, और वो उसको प्राथमिकता देता है। इनके बुढ़ापा है, इनके गुरुदेव की इच्छा है जाने की, तुरंत व्यवस्था करती है, करता है। अब पांचों तो एक तरीके से नहीं होते ना, कोई तो इधर से सुना उधर डाल दिया, दूसरा नहीं बोलता है आ देखूंगा, तीसरा देखूंगा अभी मुझे समय नहीं है मैं आके देखूंगा। माँ बाप को सीधा तो कोई अटैक नहीं करता है, लेकिन आज्ञाकारी होगा, शब्द मांग गुरुदेव दर्शन करना है, आप रखकर जाना था इन तारीख में जाना हो, तो आपको तुरंत शाम को टिकट आपके हाथ में पकड़ा देते हैं मंदिर में। ये तो एक उदाहरण दिया, जो विनयशील शिष्य होगा, विनयशील पुत्र पुत्री बहू जो भी घर में हमारे हैं, तो वो उनके मन में उनके प्रति सम्मान की भावना होती है। कभी आपने सोचा कि हमारे ये शादी की जो व्यवस्था है ना, ये क्यों बनी, शादी का अर्थ क्या होता, मैं एक संसारिक बात भी इसमें कर रहा हूं कि शादी का पहला अर्थ होता है सम्मान। एक ऐसा जीवन साथी, एक ऐसा दोस्त मिले जो कि सम्मान करे, इसका सम्मान वो करे, उसका सम्मान ये करे। भाई किसी न किसी को तो मन की बात बतानी पड़ती है ना, अब जिससे मन मिले ही नहीं, मेरा इनसे मन मिलता है तो खुल के कोई भी बात कर सकता हूँ कि भाई कोई नुकसान होने वाला नहीं है, अच्छी कही बुरी कही। तो एक साथी चाहिए जो सम्मान करने वाला हो। तो शादी की पहली परिभाषाएं सम्मान से होती है, दूसरी होती मित्रता, फ्रेंड इन नीड, फ्रेंड इन डीड। मित्र वह होता है जो कठिन से कठिन परिस्थिति में काम आए, और वही सच्चा मित्र होता है। सब लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन पक्का मित्र होगा। आप दुविधा में हैं, आप कष्ट में हैं, आप विपत्ति में हैं, तो पहले बात के साथ बेटा आए ना आए, मित्र पहले आएगा। अरे मेरे दोस्त के ऐसा हुआ, मैं कब काम आऊंगा, तुरंत बांधता है, वो सच्चा मित्र होता है। तो पत्नी और पति एक दूसरे के सच्चे मित्र होते हैं। तो पहले शादी क्यों की जाती है, अगर करना हो तो पहले समझो कि मैं इसका सम्मान कर सकता हूं कि नहीं, हमारी आइडियोलॉजी हमारे विचार मिलते नहीं तो नहीं करना। जब सम्मान एक दूसरे का, और मैं तो जो नए नए जितने कपल आते हैं उनको पहली यही राय देता हूं, भैया 50-50। जो नए आते हैं तो उनको आशीर्वाद के रूप में कहता हूं 50-50, तुम बराबर सम्मान इनको दोगे, ये तुम्हारे को बराबर सम्मान। किस बात का झगड़ा, अब 100 वर्ष जियो ना, तकलीफ कहां है? तकलीफ कहां आती है कि मैं पति 75% 80% सब कुछ अपने चलाता दादाजी, और उसको कुछ समझ ना नहीं, तो पैर की जूती है, क्यों भाई और जा नहीं भाई आई तुमने 50-50 का मतलब मैं गर्म हूं तो तुम ठंडे रहो, तुम ठंडे हो तो मैं गर्म रहूं, तो इसीलिए आपस में समझौता। तो मित्रता। और तीसरा जो आता है वो हमारी जो वैदिक परंपरा तो ये कहती है कि जितनी भी धार्मिक प्रवृत्तियां होती है वो स्त्री, तो हमारे जैन परंपरा नहीं है लेकिन उनकी परंपरा कहती है कि जितनी धार्मिक परंपरा जो है वो स्त्री बिना में नहीं होता है। अश्वमेध युद्ध, अश्वमेध यज्ञ करना पड़ा, तो जो माता सीता तो जो वनवास में थी, और प्रश्न आया उनके आचार्य ने कह दिया कि अब अश्वमेध हो नहीं सकता, पत्नी कहाँ है? तो फिर क्या है, हनुमान जी बहुत होशियार थे, उन्होंने सीता माता की गोल्डन वैसी की हूबहू जो है वो बना करके कर दी, और साक्षात उसमें वो प्रकट होती थी कई बार सीता। तो इस तरीके से उन्होंने होशियारी से कहा और आचार्य ने मान लिया और अश्वमेध यज्ञ हो गया। तो ये परंपरा उनकी है, हमारी परंपरा तो ये है कि जीव जो है वो एक दूसरे को व्यवहार रूप में सहयोग करें। तो इस तरीके से बंधुओं जो है हमारा, हमें हमारे में सब चीज की समझ आनी चाहिए। तो हम हिंसा अहिंसा की बात से थोड़ा अलग चले गए थे क्योंकि फ्री टाइम है और फ्री बात है, अभी इतनी हमारी इतना हमको तो करना है। तो इस तरीके से जो अपकाय के जीव का अभी विज्ञान ने बहुत परीक्षण किया है, गुरुदेव महाप्रज्ञ जी के सामने एक, अब तो कई किताबें छप गई है, 2-3 जो है वो जापान के वैज्ञानिक आए थे, उन्होंने किताब बताई, महाप्रज्ञ जी के सामने भी वहां हाजिर थे, उन्होंने कम से कम 50 फोटो लिए, उन्होंने 50 पात्र के अंदर अलग अलग तरह का जल रखा, ठीक है ना, कोई जल अशुद्ध था, कोई जल शुद्ध था, कोई जल जो है वो एक्वागार्ड का था, कोई कुएं का था, कोई नहर का था, कोई कई झरने का था, और एक एक के अंदर मीटर लगाया, और उस मीटर के माध्यम से एक व्यक्ति उसको बोला तू कितना गंदा है, कितना खराब है, दूसरे जल को मीटर के माध्यम से अपनी भावना पहुंचाई, भावना तुम कितने शीतल हो, हमारी प्यास को बुझाते हो, तुम कितने धन्य हो, और आपके प्रति हमारी कृतज्ञता है, इसलिए अलग 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 भाव एक एक को दिए, और जब वो जम गया भर रूप में तो बकायदा उन्होंने चित्र खींचे हैं जिनको नकारात्मक भाव कहे गए कि तुम खराब हो, तुम अशुद्ध हो, तो वहां पर जो है वो जो वहां का जो फोटो बनाना वो भी वैसा ही गड़बड़ फोटो बना, और जिनको अच्छी भावना थी तो बहुत बड़ा सुंदर चित्र बना, एक तो बेडोल बना और एक सुंदर चित्र बना, और एक एक का विश्लेषण जो जो भावना दी गई थी उस विश्लेषण के आधार पे उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि जिस तरीके से हमारे पर किसी की कही हुई भावना का असर होता है उसी तरीके से इसके अंदर भी जीव है, जब इनको प्रेषित किए गए भावना है उसका असर हुआ, उसकी संवेदना हुई बंधुओं, ये विज्ञान मान रहा है। और भगवान की वाणी है, भगवान की वाणी कभी झूठी नहीं मान जाती, क्योंकि वो केवल ज्ञानी है। उनको भूत भविष्य वर्तमान और जो है हर वस्तु की, चाहे जीव व अजीव की, हर पर्याय को वो जानते हैं। लेकिन विज्ञान अब आया, विज्ञान को आए हुए 100-200 साल हुए हैं, और भगवान ने तो 2500 साल पहले ही कह दिया था कि इसमें जीव है, आज विज्ञान मानने चला है। तो बंधुओं, अपकाय हम ज्ञानी हैं और अपकाय को जानने वाले हैं, तो हमें व्यर्थ रूप से जो है पानी का अपव्यय नहीं करना चाहिए। और जितनी हमारी आवश्यकता है, ये तो हमारी विवशता है, क्योंकि हम गृहस्थी हैं, साधु तो कुछ करते नहीं हैं। साधु के लिए कहा जाता है, साधु कौन होता है? तीन बातें कही जाती है कि साधु वह होता है जिसके कोई रसोई नहीं होती। साधु भोजन नहीं पकाते, गृहस्थ के नहीं पकावते, कैसे काम करे? दूसरा ये है कि साधु के मकान नहीं होता, हम बिना मकान कहाँ रहेंगे? साधु तो रमते राम है, आज यहाँ चले गए, वहां चले गए, वहां चले गए। और साधुओं को तो 4 महीनों को छोड़कर के एक रात्रि के अलावा विशेष परस्ती जो गुरु दृष्टि के बिना उनको जो है वो वहां पे रुकना ही नहीं है। क्यों? कि साधु एक जगह रुक जाता है तो वो राग द्वेष से हो जाता है। इसीलिए कहते हैं कि पानी तो बहता भला, ठीक है ना, उसी तरह से साधु भी रमता भला, दोनों एक जैसे होना चाहिए, वो गंदा नहीं होता है। और तीसरा क्या है कि साधु के संबंध नहीं होते। हम कहते हैं भाई संसारी पक्ष में आप किसके बैठे हो, ये कहते हैं ना हम उनको, सीधा थोड़ी कहते हैं हम आपको, तो पूछते आप किसके बैठे हो, आप कहाँ के रहने वाले, सारे संबंध पूछते हैं। वो तो वसुधैव कुटुंब के सदस्य हैं, पूरी सृष्टि उनकी दुनिया के सदस्य हैं, उनके इस उन्होंने तो अगर थी पत्नी उसको भी छोड़ दिया, तो इस संसार की जितनी भी स्त्रियां हैं उनकी बहनें बेटियां माएं हैं और संसार के सारे भाई है, वो तो वसुदेव कुटुंब के सदस्य, उनकी तो बात ही अलग है कि उन्होंने तो परमार्थ का रास्ता ले लिया है। हम अभी गृहस्थ हैं, हम स्वार्थ और परार्थ दोनों ही, हम परार्थ की भावना में रहें वो भी बहुत अच्छा है। परार्थ का होता है लिव एंड लेट अदर्स लिव, हम भी जिए तुम भी जियो, आराम से रहो, हम भी आपको कष्ट नहीं दें, पड़ोसी को भी कष्ट नहीं दें। षट जीविका के छोटे छोटे जीव इनको अभय दान दें। अभय दान कैसे होता है ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई मेरे को दिन भर के अंदर स्नान स्वयं के लिए, कपड़ों के लिए इतना लीटर पानी दिएगा और मेरे द्वारा रसोई करने के लिए इतना करेगा। एक एवरेज मोटे मोटे तौर पे बढ़ा दिया भाई 50 लीटर पानी पिए, तो आप संकल्प करते हैं 50 लीटर से पानी से ज्यादा उपयोग नहीं करना। तो अब दुनिया भर का पानी है तो उन सब बीच वाले पानी को हम अभय दान देते, मेरी तरफ से चिंता करने की जरूरत नहीं, मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगा, आप मेरी तरफ से निश्चिंत रहो, ये अभय दान होता है। ये पृथ्वी का है, अप का है, तेजस का है, वायु का है, वनस्पति का है, त्रस का है, सबको हम अभय दान दे सकते हैं। साधु महात्मा तो सबको अभय दान 84 लाख जीवानी को दिया हुआ ही होता है, वो तो सहन करते हैं, वो देते किसी को नहीं, वो तो हमारे सामने एक आदर्श है। तो हम ये अपकार की बात कर रहे थे, अब हम चलते हैं कि तेजस काय। तेजस काय का मतलब होता है ये जो अग्नि पैदा होती है, अग्नि जलाने की अग्नि हो सकती है, और जो है हमारे जो ये खाने हैं, खाने से निकलने वाली अग्नि हो सकती है, चूल्हे की अग्नि हो सकती है, पेट्रोल की अग्नि हो सकती है, ये सारी क्या है कि तेजस काय में आती है। तो तेजस काय के लिए भी आज विज्ञान ने बड़ी बड़ी माइंस जो अपने कोयले की है, कोयले की माइंस के अंदर और भी ऐसी माइंस है, तो वहां पे मतलब जो है वो यहाँ पे अग्नि निकलती है, तो वहां भीतर जाके 200-400-500 फीट भीतर जाकर के उन्होंने जो है इस बात का पता लगाया है कि अग्नि काय के जीव है, जो कि अपन तो 100 डिग्री टेम्परेचर में उबल जाते हैं, पानी भी उबल जाता है, लेकिन वो जीव 800 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर भी वो जीव नहीं मरते, क्योंकि वो तेजस काय के जीव है, उनका शरीर अलग तरह का होता है, उसको सहन कर लेता है, और उनमें वही गुण मिले हैं जो पृथ्वी काय में अप काय में मिले, यानी जीव होने का संकेत उनको मिला है, जो विज्ञान ने आत्मा नहीं बोल करके जो कॉन्शियसनेस कहते हैं, तो कॉन्शियसनेस कि जो परिभाषा के संकेत हैं वो तेजस काय के अंदर भी मिले हैं, तो उन्होंने ये माना है कि तेजस काय है। तो बंधुओं, हम उस तेजस काय को जितना जितना हमें उपयोग करना है उतना, जैसे बहने हैं तो ध्यान रखें कि हमें गैस का चूल्हा कितनी देर जलाना है, आपके जो पंखा है, बिजली है और कई चीज़ें जो है वो आप घर में जो पकाते हैं वो उस मशीन का है, बहुत सी चीज़ें हैं, हीटर है, गीजर है, ठीक है ना, एसी है, जो भी अपने तेजस काय से जो चलते हैं ना, उनका हम बिना विवेक ये धम्म आई है, हर चीज में हम विवेक करें कि इस चीज की हमको आवश्यकता नहीं तो इसका हम स्विच तो ऑफ तो करें, इसका हम अननेसरी जो है ना क्यों इसका व्यय करें। उसके सामाजिक पक्ष भी है, अगर हमने आज सरकार कितना कहती है कि बिजली बचाओ, क्योंकि आज हम ठीक है आपका कहता है बिल भर दोगे वो बात जुदा है, लेकिन आपने 24 घंटे भवन के अंदर फुल्ली छोड़ी बिल्ली, आपने बिजली को पंखों को आप ऐसा भर दोगे पैसे वाले हो, लेकिन आपने किसी न किसी का तो शोषण किया ना, किसी के हक को मारा, ये बिजली बेचारे कईयों को बिजली नहीं मिलती है, तो आप अपनी आवश्यकता अनुसार करते। हर व्यक्ति अपनी अपनी आवश्यकता अनुसार चीज का उपयोग करे तो उसके अंदर हमारी अहिंसा है, अहिंसा की भावना जुड़ी हुई है, अनाशक्ति की भावना जुड़ी हुई है और ये धर्म से जुड़ा हुआ है, सभी उससे जुड़ा हुआ है। तो ये विवेके धम्म माइये, विवेक ही धर्म है, इसका हमें करना। और ये हिंसा अहिंसा विवेक की बात कब आएगी, इन सूक्ष्म सूक्ष्म जो हमारे जीव निकाय है उनका हम सोचेंगे। तो ये तेजस का है, अब हम ये वायु का है, वायु काय के अंदर ये पट्टी हमारे साधु संत आपने मुख पट्टी बांध रखी है, क्यों बांधते हैं, आज विज्ञान ने भी ये परीक्षण किया है, इस वायुमंडल में सेसेक्स नाम के वायरस होते हैं जो कि पूरे वायुमंडल के अंदर वो फैले हुए होते हैं, जब हम बोलते हैं तो उन वायरों तक हमारे मुंह की गर्मी जाती है और वो कोमल होते हैं, वो बेचारे मर जाते हैं। इसलिए साधु साध्वी या हम लोग भी जब कमाई करते हैं तो मुख के पट्टी बांधते हैं ताकि उनकी असाधना न हो, उनकी हम हिंसा नहीं करें। तो ये वायु काय के जीव होते हैं, तो ये सारी अच्छा दूसरा उसके अलावा भी वायु काय में बहुत सी चीज़ें होती है, हम चीज़ों को फालतू झटकते रहते हैं, आवश्यकता ही नहीं है, या इस तरीके की हमारी फैक्ट्रियाँ होती है जिसमें कि फालतू चीज़ें चलती रहती, आवश्यकता की बात अलग है। तो वायु काय के जीवों की हम हिंसा को जो है विवेक के द्वारा रोक सकते हैं, और कुल मिलाकर के हमारी आवश्यकता ना हो तो उस चीज़ का हम उपयोग नहीं करें, ये बहुत बड़ा हमारा विवेक है और बहुत बड़ी हम हिंसा से बच सकते हैं। तो पृथ्वी काय, अप काय, तेजस काय, वायु काय और वनस्पति काय, अब वनस्पति काय का तो आज से सैकड़ों वर्ष पहले सर जगदीश चंद्र बसु नाम के वैज्ञानिक हुए हैं, तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया था कि वनस्पति जैसे हमारे में दुख होता है, दर्द होता है, संवेदना होता है, अनुभूति होती है, वैसे के वैसे उसमें होता है। और वनस्पति तो आज चीज छुपी हुई नहीं है, जैसे छुई मुई का पौधा होता उदाहरण के तौर पर, उसकी तरफ आप अंगुली करो उसको भय लगता है, ये पता नहीं मेरे को ये काटने आए हैं या किस लिए आए हैं, तो वो क्या है अपने शरीर को छुपा लेती है, सिकुड़ देती है। तो इस तरीके से और दूसरा ऐसे बहुत से परीक्षण किए हैं, आप किसी पेड़ के पास में जाकर के पौधे के पास में नकारात्मक भाव लेकर के जाओ कि मैं तुम्हें काटने वाला हूँ, और एक्शन करे व्यक्ति कि इसको काटने वाला भले काटे ना, तो उसमें क्या चीरन चालू होती है, उसको आजकल मीटर के द्वारा नापा गया है, कि वनस्पति बॉटनी विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि उसकी हर चीज को, उसकी हर संवेदना को वनस्पति विज्ञान में तो इतना मालूम पड़ गया है कि ठीक हमारी तरह जो है वो भी दुख दर्द, अब किसी के पेड़ की टहनी कटती है, पत्ता कटता है, तो खट वहां पे बॉटनी वाले जो है ये परीक्षण कर लेते हैं, उसके अंदर से वो खून का एक घाव निकलता है जो है, तो उसको भी जैसे अपने खून निकलने से दर्द होता है, वैसे आजकल तो वनस्पति पे तो बहुत समय पहले आते नहीं है और ये प्रूफ हो गया है कि वनस्पति में जीव होते ही है। ये विज्ञान ने भी मान लिया है, तो उसमें कहीं संशय की कोई बात नहीं है। और ये सबसे बड़ा जगत है वो वनस्पति जगत है। सब में जैसे कि प्रत्येक वनस्पति, साधारण वनस्पति, सारा जो खाता है और उसके अंदर निगोद के जीव है, और अब इसमें हम बात करें तो जैसे आलू है, हमारे जमीकंद है, ये खास तौर से समझने की बात है वनस्पति में। तो जमीकंद में क्या होता है कि जो जमीन होती है, जिसके अंदर जो जड़ में पैदा होता है वह जमीकंद कहलाता है। जैसे कि आलू है, गाजर है, और आपका जो है ये जो लहसुन है, मतलब जिसकी जड़ है जो जमीन में होती है वह जमीकंद कहलाता है। और इसमें कई साधारण वनस्पति जो है वो इसके अंदर एक साथ रहती है। तो साधारण वनस्पति में अनंत जीव होते हैं, वो एक साथ रहते हैं, उनके कर्मों की गति ऐसी होती है कि वो एक साथ ही जन्म लेते हैं और एक साथ ही वो मरते हैं। उनकी आयुष्य का बंधन भी वैसा ही होता है। जैसे एक आलू के अंदर असंख्य जो है वो साधारण वनस्पति के जीव होते हैं, और जो वो एक साथ आलू पैदा होता है तो 150 जितनी भी संख्या है वो एक साथ पैदा होते हैं। जब उसको पानी में उबाल दिया जाता है तो वो एक साथ मर जाते हैं। उनकी जो आयुष्य का बंधन इस तरीके से होता है साधारण वनस्पति गाय का। तो बंधुओं, ये खाता बहुत बड़ा खाता है। हम गृहस्थी हैं तो हम क्या है कि वनस्पति के उपयोग को रोक नहीं सकते हैं। लेकिन एक भिंडी है, भिंडी के अंदर हमको साफ दिखता है जितने बीज है, जितने जितने बीज होते हैं सब वो वनस्पति गाय की संख्या मालूम हो जाती है। अब आलू के अंदर, लहसुन के अंदर, प्याज के अंदर, गाजर के अंदर असंख्य जीवों की हम गिनती कैसे करें? हमको अपना पेट भरना, हमको भोजन करना है और हमको सब्जी खानी है, तो जो लिमिटेड जिसके अंदर हिंसा होना तो उसका ही उपयोग क्यों किया जाए? हम उससे कई गुना असंख्य तरह की हिंसा का जो है हम उपयोग क्यों करें? ये सबसे बड़ी बात जैनी लोगों को समझने की है। और इस खाद्य के अंदर हमारे जैन लोगों के सभी संप्रदायों ने इस जमी कंद के ऊपर बहुत बड़ी व्याख्या की गई है। आगमों में आई है, जीवन व्यवहार में आती है, प्रवचन में आती है। तो बंधुओं, कम से कम जो जैनी है वो इतना समझदार है और इतना हमको बचपन से ही सिखाया जाता है जमीकंद के बारे में, तो कम से कम हम बहुत बड़ी हिंसा से जमीकंद का उपयोग स्वयं नहीं करके, घर में नहीं ला करके, हम घर में भी ऐसा वातावरण बना रहे हैं बच्चों में प्रारंभ से जो है वो हम ऐसी प्रवृत्ति डालें कि दूसरे से सेटिस्फाई हो जाए। अब प्रश्न ये है कि उसके अंदर स्वाद ज्यादा आता है, तो स्वाद को वैसा है प्रैक्टिस डाल, स्वाद उसमें भी आ जाता है। तो इसीलिए ये बहुत बड़ा पॉइंट समझने का है, और ये ग्रस्त लोगों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ढंग से समझाने का और करने का है। तो हम ये जो जो हमारी जो ये जो है जमीकंद है, इससे हम बहुत बड़ी जो है हिंसा से बच सकते हैं। तो ये हमारा वनस्पति गाय का हुआ, और वनस्पति गाय का इतना खाता बड़ा है, इतनी तरह की असंख्य तरह की वनस्पति है। और आजकल वनस्पति में एक बात क्या हो गई है कि आजकल ग्राफ्टिंग करके और वो कॉलोनाइज करके जो है वो एक जैसी वनस्पति की फैक्ट्रियां लगती है, वो उगाए जाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर ग्राफ्टिंग में क्या होता है कि बॉटनी वाले करते हैं कि जैसे गुलाब की कलम लगाते हैं, एक पर्टिकुलर तरह की कलम है, और एक एक जैसे जो है वो क्लोनिंग कहलाती है, एक ही जैसे फूल जो है वो। इसीलिए हमको बड़े बड़े जो है वो जितने भी हमारे ये बगीचे हैं एक जैसे फूल मिलते हैं, सारे बड़ी संख्या में मिलते हैं। ये सारा क्लोनिंग से, ग्राफ्टिंग से होता है। और ये आजकल जो है वो दूसरे जीव जंतुओं में भी क्लोनिंग चालू, मनुष्य के लिए भी क्लोनिंग के लिए 2-4 एक्सपेरिमेंट हुए थे कि जैसे मेरी कोशिका को निकाला और इस कोशिका को किसी मादा के गर्भाशय के अंदर उस कोशिका को स्थापित कर दिया, बाहर किया हो अंदर किया हो, लेकिन वो विज्ञान बाहर करके भी उसके जैसा का जैसा वो उस हूबहू, कर्म अलग होते हैं लेकिन हूबहू शक्ल वाला जो है वो इंसान पैदा हो जाता है 9 महीने के बाद में, ये क्लोनिंग पर। लेकिन इस पे जो है वो अब जाकर के जो है पाबंदी लग गई कि इससे अनैतिकता पर, 2-3 ऐसे अमेरिका में प्रयोग हुए, लेकिन पाबंदी वहां भी लग गई कि ये भ्रष्टाचार का काम है, अनैतिक का काम है। मनुष्य बहुत विशिष्ट प्राणी है तो वो काम अब नहीं हो रहा, लेकिन मनुष्य के नीचे पेड़ पौधे पशु पक्षी सबकी जो है ये कार्रवाई हो रही है। अगला प्रोग्राम करना आपको
बता।